Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari नाम यद्गानम् ब्रह्मते मिरहानम् वितनुते पदाम्भोजध्यानम् दिशते परमानन्द पदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणत जनता जुष्ट चरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम् नारायण 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 कठोपनिषद अध्याय दो वल्ली दो मंत्र संख्या चार अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् शरीर की मृत्यु के पश्चात क्या रह जाता है और क्या चला जाता है। तो जो रह जाता है वो तो सबको मालूम है, स्थूल शरीर रह जाता है। और क्या चला जाता है इसके बारे में अनेक विवाद हैं। कोई कहते हैं कुछ होता तो जाता, कुछ है ही नहीं इसलिए जाता ही कुछ नहीं है। कोई कहते हैं नहीं, सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है। कोई कहते हैं जीवात्मा निकल के जाता है। कोई कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही निकल के जाता है। नारायण, अनेक प्रकार के वाद हैं। कहते हैं भाई, जिसके जाने पर कुछ तो निकल के जाता है, तभी तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो जिसके निकल जाने पर, जिसके न रहने पर ये शरीर मुर्दा हो जाता है, बस उसी को तुम आत्मा समझो। अस्य विश्रंसमानस्य, इसके भ्रष्ट हो जाने पर किसके शरीरस्थस्य देहना, शरीर में स्थित ये जो देही जीवात्मा है, इसके भ्रष्ट हो जाने पर अर्थात देहाद विमुच्यमानस्य, देह से बाहर निकल जाने पर, छोड़ जाने पर किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या रह जाता है सिवाय इसके कि मिट्टी है, उसे उठाकर चाहे जला दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे आकाश में फेंक दो। क्या था अब तक जो ये हिल रहा था, डुल रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, और एकदम क्या हो गया? क्या चीज थी जो अब इसमें नहीं है? बोले दो चीजें हैं, एक तो पहले भी थी और अब भी है। अभी भी तो देह मालूम पड़ता है कि देह है, जैसे पहले मालूम पड़ता था कि देह है, ऐसे ही अब भी मालूम पड़ता है देह है। तो सत्ता के रूप से तो वो अभी भी विद्यमान है। और ये जो वाला वाला था, हंसने वाला, बोलने वाला, करने वाला, चलने वाला, फिरने वाला, ये अब वाला नहीं दिखाई पड़ता है इसमें। तो इसका अर्थ है ये दो चीजें हैं। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसमें क्या चीज फ्यूज हो गई? बिजली तो अब भी आ रही है, लेकिन वो बल्ब का कनेक्शन जो था, जो तार थे जो आपस में जुड़े हुए थे, वो फ्यूज हो गए, वो अब जुड़ नहीं रहे, तो संबंध कट गया। तो ये स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का जो संबंध है, यही कटता है नारायण, इसी को मरना बोलते हैं। और जब ये संबंध जुड़ जाता है तो इसी को जन्मना बोलते हैं। पहले सूक्ष्म शरीर बनता है कि पहले स्थूल शरीर बनता है? तो पहले सूक्ष्म शरीर बनता है नारायण, और उसके पश्चात जैसी उसकी भावना होती है सूक्ष्म शरीर में आए हुए जीव की, आगे आएगा मंत्र यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उसका ज्ञान है, जैसा उसका कर्म है, उसी के अनुसार उस सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर में ऐसा समझ लो जैसे पहले ड्राफ्ट आउटलाइन बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं नहीं? तो नक्शा जो है ये तो है सूक्ष्म शरीर, और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है ये है स्थूल शरीर। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़े कैसे? बोले प्रारब्ध के कारण जुड़े, और जब प्रारब्ध नष्ट हो गया तो उसी के कारण अलग हो गए। इसी को जीना और मरना बोलते हैं। तो बोले जीवात्मा के साथ इसका क्या संबंध है? बोले जीवात्मा के साथ, जीवात्मा कहते किसको है, इसे बार बार समझाने समझने की जरूरत है। जीवात्मा माने जो सूक्ष्म स्थूल और कारण इन शरीरों को मैं मेरा मानने वाला चैतन्य है, उसको ही जीवात्मा बोलते हैं। तो जब तक ये मानता है कि ये स्थूल शरीर से मैं काम करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, तब तक तो उसे स्थूल शरीर की आवश्यकता रहती है। और जब 60-70-80 वर्ष के हो गए, बोले अरे भाई अब क्या देखना है, सब कुछ देख लिया। जब निराशा आ जाए ना जीवन में, तब समझना अब अंतिम तैयारी हो रही है। क्योंकि निराशा आने का मतलब है अब जीने की इच्छा समाप्त हो रही है। ये जीने की इच्छा ही स्थूल और सूक्ष्म को जोड़े रखती है। तो बोले जीने की इच्छा तो किसी की नहीं मिटती है, तो क्या कोई मरेगा ही नहीं? बोले नहीं, जीने की इच्छा तो बनी रहती है, लेकिन भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो भोग माने सुख दुख होता है, सुख दुख का भोग ही भोग है, और कुछ भोग नहीं है। तो जब वो कहता है अरे अब सब देख लिया, अब कोई जरूरत नहीं है, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, सुख के ही बारे में परेशान रहते हैं, तो फिर इच्छा जहां विशेष इच्छा समाप्त हुई तो समझ लो प्रारब्ध अब चुक गया। अब जब भी नंबर आ जाए तभी नंबर आ जाएगा नारायण। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जॉइंट करने का काम जो है ये प्रारब्ध का है, और प्रारब्ध का ही काम है इनको अलग करना। तो अलग हो गया तो मृत्यु हो गई और मिल गए तो जन्म हो गया। इसलिए कहा देहाद विमुच्य मानस है, तो क्या निकला इसमें से? सूक्ष्म शरीर निकला, और सूक्ष्म शरीर को मैं मानने वाला जो जीव है वो जीव भी उसी के साथ निकल गया। जैसे आप घड़े में पानी है और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है, अब पानी आपने उसमें से निकाल लिया तो प्रतिबिंब का क्या हुआ? वो भी निकल गया। तो निकलता तो है सूक्ष्म शरीर पानी, और आरोपित हो जाता है वो आत्मा के ऊपर, क्योंकि उसके साथ ही उसकी प्रतीति होती है, उसके बिना उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो सूक्ष्म शरीर के बिना जीव के रूप में आत्मा की प्रतीति नहीं होती है, तो सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल जाता है, इसलिए उसकी प्रतीति भी समाप्त हो जाती है। ये आत्मा की प्रतीति क्या है? यही हिलना डुलना, चलना फिरना, करना हंसना बोलना, यही सब प्रतीति है। इससे मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें कोई चैतन्य है। अच्छा, दो शब्द हैं, एक चैतन्य है और एक चेतना है। तो चैतन्य माने तो होता है ज्ञान, और चेतना माने होती है क्रिया, क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति को तो सत्वगुण बोलते हैं और ज्ञान को आत्मा बोलते हैं। फिर दोबारा बोलता हूं, एक है ज्ञान, एक है ज्ञान शक्ति और एक है क्रिया शक्ति। तो जो सत्वगुण है वो है ज्ञान शक्ति, जो रजोगुण है वो है क्रिया शक्ति, और आत्मा का स्वरूप शक्ति नहीं है, ज्ञान है। ये सच्चित आनंद जो आत्मा का स्वरूप है ना, असल में यही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में हमको प्रतीत होता है। आनंद जो है वो सत्वगुण के रूप में प्रतीत होता है, और चित जो है वो रजोगुण के रूप में प्रतीत होता है, और जो सत्ता है वो तमोगुण के रूप में प्रतीत होती है। तमोगुण काली नहीं है, तमोगुण माने स्थूलता। ये स्थूलता जितनी भी है ये सब सत का विलास है। तो हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है इसलिए मालूम पड़ता है कि सत है, 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 है। है पना जो है वो स्थूल वस्तुओं में ही मालूम पड़ता है, और हिले डुले नहीं तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि इसमें कोई चैतन्य है। इसलिए रजोगुण जो है ये चित्त का विवर्त है, और सत्वगुण जो है ये ज्ञान का विवर्त है, सॉरी आनंद का। तो सत का विवर्त है स्थूलता तमोगुण, और चित्त का विवर्त है रजोगुण, और आनंद का विवर्त है सत्वगुण। ये सच्चित आनंद को ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा बोल देते हैं। तो ये व्यावहारिक रूप है सच्चित आनंद का। तो इसके निकल जाने पर, माने सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर, और सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर जीवात्मा निकल गया ऐसा कहा जाने पर, किमत्र परिशिष्यते, क्या बच रहता है? अर्थात कुछ नहीं बचता है, वही मुर्दा हो जाता है। तो वो जो निकल गया वो तो भौतिक वस्तु निकली, सूक्ष्म शरीर, और जो चैतन्य में आरोप हुआ वो आविद्यक है। लेकिन ये तब तक नहीं मालूम पड़ती है कि यह आविद्यक है जब तक कि ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो सही ही मालूम पड़ता है कि हाँ, जीवात्मा निकल गया इसमें से। जैसे सपने में आप कहीं आते जाते हो तो कौन सा शरीर आपका आता जाता है? सूक्ष्म शरीर ही तो निकले। तो सूक्ष्म शरीर अगर पूरा का पूरा निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। तो पूरा सूक्ष्म शरीर नहीं निकलता, उसमें जो एक स्थूल शरीर की छाया पड़ी हुई है मन में, वो स्थूल शरीर की छाया ही मन में वहां पर स्वप्न के रूप में अपने आप के रूप में प्रतीत होती है। तो जा रहा हूं तो कौन जा रहा है, बोले जग गए तो कुछ नहीं जा रहा हूं। तो ये ज्ञान होना जो तो है, ये तो है जगना और बाकी तो है सपना। यहीं जग जागहि जामिन जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिय तबही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। विषयों के विलास से जब वैराग्य हो जाता है तब उसको ही जगना बोलते हैं। तो ये तो प्रथम कक्षा बताई, उसके बाद में फिर आत्मज्ञान होगा तब पूरा पूरा जगेगा। आंख खुल गई ये तो वैराग्य है, और आंख खुल करके और फिर अपना और दूसरे का होश आ गया ये नारायण पूर्ण जगना है। उठकर चल दिए ये पूर्ण जगना है। तो ऐसे ही किमत्र परिशिष्यते, इस सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर और उसके साथ तथाकथित जीवात्मा के निकल जाने पर फिर यहां क्या शेष रहता है। अच्छा, एक अज्ञानी मरा और एक बोधवान मरा, शरीर तो दोनों के मरते हैं, तो दोनों में क्या फर्क होगा, मरने में क्या फर्क होगा। तो सूक्ष्म शरीर तो उसमें से भी निकलेगा, उसमें से भी निकलेगा, लेकिन ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर तो जैसे स्थूल शरीर यहां पंचभूतों में मिल जाता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी यहीं पंचभूतों में मिल जाता है। फॉर्मेशन नहीं होता उसका, एक खास प्रकार से आकार ग्रहण करके उसमें नहीं निकलता। और अज्ञानी का सूक्ष्म शरीर जो है वो भी निकलता है, लेकिन वो एक आकार लेकर के निकलता है, और वो आकार कहां से बन जाता है कि जीव बना लेता है, जैसे सपने में अपना आकार बना लेता है, ऐसे ही स्थूल शरीर की छाया से, माने अभ्यास हो गया कि यही मैं हूं स्थूल शरीर, तो बस वहां भी मालूम पड़ता है कि मैं जा रहा हूं इस शरीर में से निकलकर। और फिर अध्यारोप में शास्त्र ने बड़ा लंबा चौड़ा अध्यारोप किया, बोले वो निकल के जाता है और फिर 13 दिन तक वहीं घूमता है अपने शरीर के आसपास, और फिर जब देखते हैं कि ये तो सब लोग अपने काम धंधे में लग गए, खा रहे हैं पी रहे हैं, सब लोगों को दावत दे रहे हैं नारायण, मरने की दावत देना ये भी तो एक सिर्फ गम को भुलाने का एक तरीका है। तो देखते हैं कि अब तो ये सब अपने काम धंधों में लग गए, अब चलो भैया हमारे यहां पर गुजर नहीं है। तो बहुत लंबा चौड़ा अध्यारोप है। फिर वो कहते हैं वहां से 13 दिन के बाद उसकी प्रेत यात्रा शुरू होती है। फिर वो यमदूत या जिस लोक के जाने वाले हैं वो उसको ले जाते हैं नारायण। फिर वहां उसका न्याय होता है, नरक भेजें स्वर्ग भेजें कौन सी योनि में। अब ये सब जो है एक के बाद एक अध्यारोप है। सपना जब चालू होता है तब ये पता नहीं रहता है कि अगला स्टेप क्या आएगा। एक स्टेप आया और वो दिखाई देने लगा, फिर दूसरी स्फुरणा हुई फिर वो सामने दिखाई देने लगे। अब पहली स्फुरणा में और दूसरी स्फुरणा में कोई संबंध नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकों से आप पूछ लेना। स्वप्न जो होता है ये स्फुरण रूप है, एक ज्ञान उत्पन्न होता है वही दिखने लगता है अभ्यास से, ये जीवात्मा उसको जो है मूर्त रूप दे देता है। तो एक स्फुरणा हुई उसका मूर्त रूप सपने की तरह से दिखने लगा, फिर दूसरी स्फुरणा हुई फिर उसका मूर्त रूप दिखने लगा। अब दोनों मूर्त रूपों में कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि वो अलग काल में हुई वो अलग काल में हुई, उसका विषय दूसरा है उसका विषय दूसरा है। परंतु ये जो हमारी स्मृति है मेमोरी है, ये जैसे जागृत में संबंधों की स्मरण से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, आजकल की भाषा में बोले तो कनेक्टिविटी हो जाती है, बोले कंप्यूटर में कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो कनेक्ट नहीं होते हैं तो जब एक सपना दूसरे सपने से कनेक्ट नहीं होता है तब तो बूढ़े लोगों का सपना हो जाता है, और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो नारायण पूरी एक कहानी बन जाती है। हम यहां गए साहब, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। अब उसके बाद उसके बाद उसके बाद उनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक कथा बना करके सुबह उठ के हम सुना देते हैं, क्योंकि स्मृति जो है वो तगड़ी रहती है जवानी में। बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता है तो वो कनेक्टिविटी होती नहीं है। तो किमत्र परिशिष्यते, जो कुछ भी है ये सब स्मृति और ज्ञान का ही खेल है नारायण। देहाद विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, इसका अर्थ हुआ कि आत्मा जो है वो इस शरीर से अलग सिद्ध है। यही अंत में कहते हैं शंकराचार्य भगवान, आत्मनो अपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति सो अन्य सिद्ध। ये है इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये शरीर मरेगा, पैदा हुआ है मरेगा, इसमें जो एक्टिविटी मालूम पड़ती है वो सूक्ष्म शरीर के कारण मालूम पड़ती है, और सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटी को जीवात्मा आत्मा अपने ऊपर आरोप करके जीवात्मा बन जाता है, और जब ये मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल जाता है, जीवात्मा समझता है मैं भी निकल गया, फिर वो समझता है कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पुण्य किया, इसलिए अब उसका मैं फल भोग रहा हूं, फिर नई योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो यद्यपि कुछ है नहीं, सपने की तरह से है, लेकिन जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख होई। सपने में सिर काट लिया किसी ने अपना, अब दुखी हो रहा है सपने में, सिर भी कट गया है और दुखी भी हो रहा है, लेकिन बोले कुछ भी कहो जब तक सपना टूटेगा नहीं दुख दूर नहीं होगा। तो ऐसे ही ये नरक का स्वर्ग का एक योनि से दूसरी योनि में जाने का ये जो दुख है सुख है, सुख भी है दुख भी है, ये तब तक समाप्त नहीं होने का है जब तक के हम जागते नहीं हैं। अब कहते हैं कि ऐसा ही क्यों ना मान लो, जीवात्मा को क्यों लाते हो बीच में, प्राण शरीर में चलता हुआ मालूम पड़ता है और जब मुर्दा हो जाता है तो उसमें प्राण चलता हुआ नहीं मालूम पड़ता है, तो ऐसा ही मान लो कि प्राण उसमें से निकल गया, जीवात्मा को मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसको, इस पक्ष को काटने के लिए अब ये पांचवा मंत्र कहते हैं, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतावुपाश्रितौ। ये मनुष्य जो है केवल प्राण से जिंदा नहीं रहता है और केवल अपान से भी जिंदा नहीं रहता है। इसमें प्राण अपान दो नाम दे दिए हैं, बाकी जितने प्राण होते हैं सभी की गिनती हो जाती है। प्राण तो असल में एक ही है, ये शरीर को पांच हिस्सों में विभाजित करके प्राण का फंक्शन दिखलाओ तो उसके पांच विभाग हो जाते हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, और दस हिस्से करके यदि बताओ तो इसमें पांच और जोड़ जाते हैं, नाग कूर मुक्रकल देवदत्त धनंजय, और ये तो जस चाहिए तस काछिए नाचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जब आपने दस की गिनती करनी है तो नाम भी उनके रखने ही पड़ेंगे लेकिन ये सब शरीर के ही विभाग हैं। इतने हिस्से में धनंजय रहता है, ये जो सहस्रार है ना इसमें धनंजय रहता है, और फिर देवदत्त है, फिर कृकल है, और फिर कूर्म है, और फिर नाग है, कूर्म सबसे नीचे है, पुरुष के ऊपर नाग है। और मोटे मोटे रूप से कल आपको परसों कल बताया था कि यहां से ये जो स्टर्नम बोलते हैं, कौड़ी का स्थान जो है बीच में मध्य स्थान, हृदयाकाश से ऊपर ऊपर प्राण और नीचे नीचे अपान, अपान के फिर दो भेद, एक अपान और एक समान, प्राण के फिर दो भेद, एक प्राण और एक व्यान, नहीं उदान, और एक सारे शरीर में, तो उसका नाम व्यान। ये तो जैसी विवक्षा होती है, बताने की इच्छा होती है, वैसे ही उसके नामकरण सब कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि ये मनुष्य जो है न तो प्राण से ही जिंदा रहता है और न अपान से ही जिंदा रहता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कोई भी मनुष्य केवल प्राण और केवल अपान अथवा और भी कोई नाम रख लो प्राण के, उनसे जिंदा नहीं रहता। तो काहे से जिंदा रहता है कि इतरेण तु जीवन्ति, जिसमें यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, ये प्राण और अपान दोनों जिसके आश्रित हैं उसके द्वारा ही ये जीवित रहता है। अब किसके उपाश्रित है नारायण, तो फिर वहीं आ जाओ जो था कि मध्य वामन मासीनम, ऊपर प्राण है नीचे अपान है और बीच में वामन भगवान बैठे हैं। तो वामन भगवान माने आत्मा बैठा है, जीवात्मा बैठा है। देखो जब कभी शरीर के संबंध से आत्मा को बोलना होता है ना, तो उसका जीवात्मा करके बोलते हैं, और जब एक शरीर से उसका संबंध नहीं होता है तब उसको आत्मा करके बोलते हैं, और जब समष्टि के संबंध से बोलते हैं तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। ये बोलने के ढंग हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, वरना एक शब्द का अर्थ दूसरे में मिल जाएगा तो फिर समझ स्पष्ट नहीं होती है। अब बोले ये प्राण भी कहां से आ गए, प्राण की उत्पत्ति कैसे है? तो जैसे बताया ना रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण,